यरमिया अध्याय 17, यरमिया अध्याय 17 पद 1। यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। ये एक अद्भुत बात है कि उस युग में हीरे लोहे की छड़ में जड़कर कलम के रूप में प्रयोग किए जाते थे। यरमिया अध्याय 17 पद 1 से लेकर 5 तक। वो उनके हृदय रूपी पट्टिया और उनकी वेदियों के सिंगों पर भी खुदा हुआ है। उनकी वेदियों और अशेरा नाम देवियां जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर है, वे उनके लड़कों को भी स्मरण रहती है। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार मैं तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा, और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं। तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी ना रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है, और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है जो सर्वदा जलती रहेगी। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। परमेश्वर उन लोगों को श्राप देता है जो बाबुल के आक्रमण से मिस्र की सुरक्षा खोजते हुए उनके साथ संधि करने जा रहे थे। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, अर्थात परमेश्वर पर भरोसा ना रखने से। यरमिया अध्याय 17 पद 6। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। ये श्रापित है वो पुरुष के विपरीत वचन है। यरमिया अध्याय 17 पद 7। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, अर्थात यहोवा को। यरमिया अध्याय 17 पद 8। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। यहोवा की अपेक्षा मनुष्य के बुझ बल पर भरोसा रखने वालों पर श्राप, और उसके विपरीत उन पर आशीष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। मनुष्य के बुझ बल पर भरोसा रखने वाले सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, मृत हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे, परंतु यहोवा पर भरोसा रखने वाले उस वृक्ष के समान है जो जल के किनारे लगाया गया है और जिसकी जड़ जल के पास फैली हो। वो ग्रीष्म काल का आभास भी न करेगा, क्योंकि वो जल से ताजगी पाता रहता है। अब पद 9 देखिए, यरमिया अध्याय 17 पद 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर आपके और मेरे मन के विषय में उल्लेख कर रहा है। सुकरात ने कहा, हे मनुष्य, अपने आप को परख। कौन है जो अपने आप को परखता है? धर्मशास्त्र कहता है, हे यहोवा, तू मन और हृदय का जांचने वाला है। परमेश्वर मेरे मन को मुझसे अधिक अच्छी तरह जानता है। परमेश्वर जानता है कि मेरे मन में कैसा छल है। यही कारण है कि हमें धोखा खाना आसान होता है और व्यर्थ के विचारों का अनुसरण करना हमारे लिए आसान होता है। हमारे लिए इस कहावत पर चलना इसी कारण आसान है। परिणाम साधनों को न्यायोचित ठहराता है। हमारे साधन विकृत और दुष्टता से पूर्व होते हैं। प्रेरित पौलुस उन मनुष्यों के विषय कहता है जो ये मानते हैं, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर को महिमाविंत करता है, इसलिए परमेश्वर हमारे झूठ का न्याय न करे। या वे जो ये कहते हैं, क्योंकि मैं पाप करता हूं इसलिए ये एक प्रमाण है कि परमेश्वर सच कहता है कि सबने पाप किया है। इस कारण यदि मेरा झूठ परमेश्वर को सच्चा सिद्ध करता है तो परमेश्वर क्योंकि मेरे झूठ का न्याय करे। मैं तो परमेश्वर के वचन को सत्य सिद्ध करने में योगदान करता हूं, इसलिए परमेश्वर के कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए परमेश्वर मेरा न्याय ना करो। पौलुस ऐसे तर्क की विकृत मानसिकता के विरुद्ध कहता है और ये भी कहता है कि परमेश्वर सबका न्याय करेगा। आप कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के नाम में दुराचार एवं कुटिल कार्य भी कर रहे हैं। यदि आप उनको इन कार्यों के प्रति चुनौती दें या ध्यान दिलाएं, तो वे हैरान हो जाते हैं, वे विचलित हो जाते हैं। मेरे भाई, क्या आप मेरा न्याय करना चाहते हैं? बाइबल स्पष्ट कहती है कि न्याय करो तो धार्मिकता से। मेरे विचार में लोगों द्वारा ये कहा जाता है, आप न्याय कर रहे हैं। बाइबल कहती है मती अध्याय 7 पद 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। छल से, धोखे से और विविध युक्तियों द्वारा विश्वासियों से धन शोषण करना उचित नहीं है कि आपका कार्यक्रम चलता रहे। मैं ऐसे धार्मिक और भले कार्यक्रमों की चिंता नहीं करता। मेरी पत्नी ने मुझे इस विचार पर ध्यान देने से मना किया है, परंतु ये तो धर्मशास्त्र में ही है। मनुष्य द्वारा उपवास और प्रार्थना का विज्ञापन देना मेरी समझ से बाहर है, जबकि यीशु ने स्वयं कहा, जब तुम उपवास करते हो तो सर में तेल डालो और नहाओ कि तुम प्रसन्न दिखाई दो, जिससे कि मनुष्य जान ना पाए कि तुमने उपवास रखा है। तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है प्रतिफल देगा। और जब तुम प्रार्थना करते हो तो चौराहों पर खड़े न होना, परंतु कमरे में जाकर द्वार बंद कर लेना। जब कोई ऐसे पत्र भेजता है जिनमें लिखा हो, मैं उपवास और प्रार्थना करने जा रहा हूं, अतः आप अपना प्रार्थना निवेदन और 100 रुपए का चेक भी भेज दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए भी विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। ऐसे में निश्चय ही दाल में कुछ काला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर कहता है, मैं मन और हृदय को जांचता हूं, अर्थात मनुष्य के प्रयोजन को। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए। यीशु हमसे क्या कहता है? कि हम मनुष्य के सामने अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन ना करें कि मनुष्य देखे कि हमें प्रतिफल प्राप्त हो। यीशु हमें इसके विरुद्ध स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है। मेरी धार्मिकता प्रदर्शन की एक विधि है कि लोग देखकर कहें, ओह कैसा धर्मी पुरुष है वो। हमें यहां सावधान रहना है, क्योंकि ये एक भयानक और धोखा देने वाली बात है। मेरा घमंड और मेरा स्वभाव ये लालसा रखता है कि लोग कहें कि मैं एक महाधर्मी मनुष्य हूं। मैं यही अभिलाषा रखता हूं कि जब मैं लोगों के मध्य से निकलूं तो वो कहें, ओह ये कैसा धर्मी जन है। मेरा शारीरिक स्वभाव इससे अति प्रसन्न होता है, अतः मेरे लिए आत्मिक आडंबर आसान हो जाता है, जबकि मेरा मन परमेश्वर में नहीं है। जब मैं यहां खड़ा होता हूं तो मैं अपना सिर ऊपर उठाकर आंखें बंद कर लेता हूं कि लोग जाने मैं कैसा आत्मिक व्यक्ति हूं, और सोचता हूं लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं। वे निश्चय ही जानेंगे कि मैं आत्मिक जन हूं। मैं आशा करता हूं वे मुझे देखें। जब आप अपने पंजों पर खड़े हो जाएं तो आप और भी अधिक आत्मिक लगने लगते हैं। परंतु मेरे मन में क्या विचार है? क्या मैं ये सोच रहा हूं कि वे देख रहे हैं या नहीं? मेरी एक ही आशा है, वे मुझे देखें, वे मुझ पर ध्यान दें, कि वे माने कि मैं कितना आत्मिक जन हूं। परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है? देखो, मैं मन और प्रयोजनों का जांचने वाला हूं। बाइबल कहती है कि एक दिन हम सबों के काम आग से परखे जाएंगे और हमारे कामों में से अधिकांश कार्य धुआं हो जाएंगे। एक मिनट प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम में आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या मैंने तेरे नाम में रोगियों को रोग मुक्त नहीं किया प्रभु? यरमिया अध्याय 17 पद 10, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। आपके सब काम लकड़ी, चारे और सूखी घास के स्वरूप है। वे केवल मनुष्य को दिखाने के लिए किए गए थे, वे आपके अपने महिमावान के लिए किए गए थे कि आपका नाम ख्याति पाए। ये बड़े दुख की बात है कि वो दिन कैसा जागृति का दिन होगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। राजा दाऊद ने ये जानते हुए कि वो स्वयं अपने मन को नहीं जानता, क्योंकि वो धोखा देने वाला है, कहा है भजन संहिता 139 पद 1 और 6, हे यहोवा तूने मुझे जांचकर जान लिया है। पद 6, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। सचमुच मुझे सच्चाई का ज्ञान नहीं है। परंतु तब वो कहता है भजन संहिता 139 पद 23 और 24, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वो व्यक्ति जो ये समझ लेता है कि मन धोखा देने वाला और कुटिल है, वो निश्चय ही दाऊद के साथ उसकी प्रार्थना में सम्मिलित होकर कहेगा, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, और हे यहोवा यदि मुझ में कुछ त्रुटि है और तुझे अप्रसन्न करने वाली कोई बात है तो मुझ पर प्रकट कर प्रभु। मैं धोखा खाना नहीं चाहता, मैं स्वयं से धोखा करना नहीं चाहता। मैं जब परमेश्वर के सामने खड़ा हूं तो नहीं चाहता कि मेरे सब काम धुआं हो जाए, क्योंकि वे आग में लकड़ी, चारे और घास के स्वरूप होंगे। यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 पद 16, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यही तो मैं चाहता हूं, स्थाई फल। अतः परमेश्वर मेरी सहायता कर। वो हमारे मन को खोज रहा है, वो हमारे हृदय को जांच रहा है। यरमिया अध्याय 17 पद 10, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार। मेरे मन में क्या है? मैंने ये काम क्यों किया? यही वो बात है जिसका न्याय किया जाएगा। परमेश्वर उसे प्रतिफल देगा। यरमिया अध्याय 17 पद 10 और 11, अर्थात उसके कामों का फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है वो उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़ियों के दिए हुए अंडों को सेती है। वो अनुचित रीति से धन एकत्रित करता है। यरमिया अध्याय 17 पद 11 और 12, उसकी आधी आयु में ही वो उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वो मूढ़ ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आधी से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हमारा महापवित्र स्थान ऊंचे स्थान पर रखे हुए उस तेजोमय सिंहासन के समान है। यरमिया अध्याय 17 पद 13, हे यहोवा, हे इसराइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। ये पद हमें इसराइल को परमेश्वर की पहली पुकार की ओर ले जाता है, जब इसराइल ने दो पाप किए थे। यरमिया अध्याय 2 पद 13, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। यरमिया अध्याय 17 पद 14 से लेकर 16 तक, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहां रहा, वो अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है, मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, ना मैंने उस आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वो तुझ पर प्रकट था। वो कह तो रहा है परंतु उसका मन खेदित है। यरमिया अध्याय 17 पद 17 और 18, मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थल है। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने ना दे, मेरे सताने वालों ही की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। परमेश्वर यरमिया से उन फाटकों का उल्लेख करता है जहां से राजा का आना जाना होता था। वो कहता है, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले आया जाया करते हैं। यरमिया अध्याय 17 पद 19 से लेकर 23 तक, यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वाले भीतर बाहर आया जाया करते हैं, और उनसे कह, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ और ना किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया। विश्राम के दिन की आज्ञा उनके पूर्वजों ने नहीं मानी। यहोवा कहता है, मैंने उनके पूर्वजों को मना किया परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया। यरमिया अध्याय 17 पद 23 से लेकर 25 तक। परंतु इसके विपरीत हट किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की ये वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ना ले आओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो, और उसमें किसी रीति का काम काज ना करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम, और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे, और ये नगर सर्वदा बसा रहेगा। परमेश्वर अब भी उन्हें उद्धार और आशा का अवसर प्रदान करता है, उनके पतन की इस अंतिम अवस्था में भी, जबकि दंड उनके सिर पर मंडरा रहा है, जबकि बाबुल उनके देश का विनाश करने को आगे बड़ा चला आ रहा था। परमेश्वर उनके सामने आशा की किरण उजागर कर रहा है। मेरी ओर फिरो, मेरी आज्ञा का पालन करो, इन नगर के फाटकों में से होकर राजा और राजकुमार सदैव प्रवेश किया करेंगे। तुम कभी नाश न किए जाओगे और ना ही अपने देश से विस्थापित किए जाओगे। परमेश्वर की करुणा कितनी विशाल है, मनुष्य की मृत्यु के पल तक। ओ हमारा परमेश्वर कैसा दयावान है। यरमिया अध्याय 17 पद 26। और लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि किए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, बिन्यामिन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश से यहोवा के भवन में आया करेंगे। ये अति संभव है, ये आपके साथ भी हो सकता है। केवल मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। यरमिया अध्याय 17 पद 27। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र ना मानो, और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा, और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे, और वो आग फिर ना बुझेगी।